कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अब बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य के जानने की है वह यह कि जीव शरीर से पृथक है। जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह है। देह निरंतर परिवर्तनशील है किंतु आत्मा देही स्थिर है। इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वह तीन गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है उसे सुख तथा दुख के रूप में प्रकृति के गुणों के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं। अतः मनुष्य को इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यदि भी कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है किंतु इससे उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पांच भौतिक तत्वों क्षिति जल पावक गगन तथा शरीर एवं सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन आठ तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि है कि भक्ति की जाए। जो व्यक्ति 2400 घंटे भक्ति में लगा रहता है वही बाह्य शरीर के खास प्रतिभातों से अनासक्त रह सकता है। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है तो वह किसी अन्य बाह्य कर्म को ना तो देखता है ना सुनता है। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्णतया निमग्न रहते हैं उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि के बारे में जो समाधि में स्थित होता है वह उच्च कोटि का योगी कहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानान्तराशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो ये अध्याय चल रहा है महाराज पितु के यज्ञ स्थल पर भगवान विष्णु का प्राकट्य और भगवान विष्णु महाराजा पितु को पिछले कुछ श्लोकों से बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं और किस तरह से भौतिक प्रकृति के गुणों से अनासक्त होकर उनसे ऊपर होकर भगवान की भक्ति में लीन करते हैं और किस तरह से भौतिक प्रभावों से मुक्त रहते हैं। तो आज के श्लोक में ये कह रहे हैं उदासीनम अध्यक्षम तथा ज्ञान की आत्मा कूटस्थम एवं आत्मा नाम जो भी आत्मनिष्ठ बता रहे हैं कि जो पुरुष यह जानता है कि पांच तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। शिव रूपा जी इस श्लोक के तात्पर्य के पहले ही वाक्य में लिख रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य अब बंधन से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। तो बताया जा रहा है इस श्लोक में कि हम सब जो बात जीव हैं कैसे इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं। इस श्लोक के द्वारा बताया है कि यदा लोति शोभनम जो इस बात को जान जाएगा वो कल्याण उसका हो जाएगा। शोभनम क्या जान जाएगा कि पांच तत्वों कर्मेंद्रियों ज्ञानेन्द्रियों तथा मन से निर्मित यह शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है। कूटस्थम यह महात्मानम उदासीनम एक अध्यक्षम जो आत्मा है उदासीन है अध्यक्ष है इसका अंग्रेजी भाषा में वैसे सही ट्रांसलेशन संचालित नहीं, सुपरवाइज्ड। जो आत्मा है वो शरीर को सुपरवाइज कर रही है। जो इस बात को जान जाता है कि आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, आत्मा केवल इस पांच तत्वों और स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे है और वो केवल सुपरवाइज कर रही है, अध्यक्ष है, केवल देख रही है, तो वो इस बंधन से मुक्त हो जाएगा और वो शुद्धता को प्राप्त करता है। तो इस भौतिक जगत से मुक्त होना हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक जगत हमारा असली घर नहीं है। इसकी पुष्टि वेदों में की जाती है। श्वेताश्वर विष्णु उपनिषद के 2.5 श्लोक में बताया जा रहा है, श्रवंतु विश्वो अमृतस्य पुत्रा आर्य धामानि दिव्यानि पुष्पो। और श्रवंतु विश्वे, सुनो अमृतस्य पुत्रा, अमृतत्व के पुत्रों सुनो, कि आप सबका जो पहले का निवास स्थान था वो दिव्य जगत था, आध्यात्मिक जगत था। इतना स्पष्ट बताया जाता है कि हे अमृत के पुत्रों, हम सब अमर हैं, अमृतत्व के पुत्रों सुनो, आप सबका असली निवास आध्यात्मिक जगत में है। स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि हम इस भौतिक जगत के नहीं है। जैसे अभी हम देखते हैं इस भौतिक जगत में हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान ने कुछ न कुछ प्रबंध करके रखा है। अगर हमें प्यास लगती है तो जल है, भूख लगती है तो भोजन है। इसी ढंग से प्रत्येक जीव की ये इच्छा है कि वो अमर रहे। कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता, हर व्यक्ति आनंद रहना चाहता है। ये इच्छाएं है, इन इच्छाओं की पूर्ति का भी कहीं ना कहीं तो प्रबंध होगा। अब इस भौतिक जगत में देखते हैं कि इन इच्छाओं की पूर्ति का कोई भी प्रबंध नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है इस भौतिक जगत में, कोई भी ग्रह नहीं है जहां पे हम अमर रह सके। शर्मा जी के लोग अपनी मृत्यु है, जहां बुढ़ापा ना हो, बीमारी ना हो, यहां केवल आनंद ही आनंद हो। लेकिन हम सब जीवों की इच्छा है, तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए भी कोई ना कोई ऐसा जगत अवश्य होगा जो सनातन होगा, जहां पे अमृतत्व होगा, जहां पे मृत्यु नहीं होगी। तो निश्चित रूप से एक अध्यात्मिक जगत है और वही हमारा असली घर है। हम सबको इस भौतिक जगत से निकलकर वहां पे जाना है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये भौतिक जगत किसके समान है, एक ऐसा छिद्र जिसमें मन स्टूल पेट। कौन सा बुद्धिमान जीव एक उस मल के छिद्र में रहना चाहेगा। तो हम सबके अंदर ये प्राकृतिक एक उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे इस पॉजिटिव से हम इस बंधन से मुक्त हो सके। और जितने भी वैदिक साहित्य है, जितनी भी वैदिक रचनाएं हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वेद, सबके सब हमें सूचना देते हैं कि भगवान का एक नाम है जो कि सनातन है, जो इस भौतिक जगत से बिल्कुल परे है। और जीवों का लक्ष्य होना चाहिए वहां उस भगवत धाम में जाने का। इसीलिए इन शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों का एक दूसरा नाम है जय। जय का अर्थ है कि हम इस भौतिक जगत से विजय प्राप्त कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से विजय प्राप्त कर रहे हैं। नारायणम नमस्ते तक धर्म जय धरोत्तम देवी सरस्वती तत्व जयम होती रहे। कि उस जय के धीरे उसमें से पानी निकले, उसका हम पालन करके नारायण को नमस्कार करें। तो जय अगर हम भगवत का वाणी का पालन करेंगे तो हम जय, हम हमारी भी विजय होगी और हम इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। तो जो भी सज्जन मनुष्य है उनका कर्तव्य है कि प्रतिदिन हम भागवत का श्रवण करें। और आप सब सज्जन मनुष्य है, मैं आप सब सज्जन मनुष्य नहीं, मनुष्य तो है हम सब, अहम मनुष्य हम सब अहम वास्तव में देखा जाता मनुष्य में नहीं, हम सब मनुष्य की देह में, हम सब मनुष्य नहीं है, हम सब मनुष्य की देह में। कोई अगली बात बता रहे हैं आप सभी में। पहली बात तो मनुष्य को जानने की है कि वह जीव शरीर से पृथक है, जीव देही है और यह भौतिक शरीर देह है। तो ये कहना कि मैं मनुष्य हूँ ये भी गलत है। मैं मनुष्य के अंदर रहने वाला जीव हूँ, मनुष्य देह के अंदर रहने वाला जीव। कुछ समय के लिए ये मनुष्य देह मिला है, उसके बाद ये समाप्त हो, फिर पता नहीं कौन सा देह होगा। मैं देही हूँ और जो ये देह है इसमें निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है, निरंतर परिवर्तन। लेकिन उसमें निथाते हैं परम जरा दिखा दिया सत्र न हो दूसरे करते कि जिस तरह से हम देख सकते हैं आत्मा इस मनुष्य शरीर में रहते हुए देख सकती है, अध्यक्ष है, अधीक्षक देख रहे हैं कि किस तरह से कौमारम यौवनम जरा कौमार अवस्था से यौवन और फिर बुढ़ापा तथा ध्यान कर प्राप्ति रहते इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला गया। शरीर में कल इस शरीर में था, यहाँ से निकला इस शरीर में आ गया। बस तो जो धीर व्यक्ति वो जानता है तो इस सारे प्रोसेस को देख रहा है कि दिन यहाँ से निकले इस देह में चला गया, क्योंकि जब इस शरीर में भी था तो अलग अलग स्थितियों में था शरीर। तो धीर स्तरणा मोहित, धीर इस स्थिति से मोहित नहीं होता। तो हम सबको धीर बनना है। धीर की परिभाषा ये है कि जो भौतिक प्रकृति में उतार चढ़ाव से मोहित ना हो, विचलित ना हो, वो धीर। तो धीर स्तरणा मोहित। लेकिन हम वो क्या सोचते हैं कि मैं ये देह हूं, देही देह में उसके समान है जैसे कि गाड़ी के अंदर ड्राइवर, जैसे लिखा है कि देही संचालन कर रहा है, देही संचालन कर रहा है देह का, उसी ढंग से ड्राइवर संचालन कर रहा है गाड़ी का। लेकिन झूठे अहंकार के कारण हम क्या समझते हैं कि हम एक शरीर कहते हैं ना, हम जो गाड़ी में बैठे हैं वही रिक्शा पीछे हो जाओ, तो जो रिक्शा चला रहा है उसको यही बोला कि रिक्शा चलाने वो रिक्शा पीछे हो, अरे मुझे क्यों ठोक दिया अरे मुझे कहां ठोक, मेरी गाड़ी को ठोका गया। तो ये झूठा अहंकार है, बोल रहे हैं कि मैं कार हूं, अहंकार अस्मि। तो ये अहंकार हो गया, अहम ब्रह्म अस्मि नहीं है, अहंकार अस्मि, मैं कार हूं, ये अहंकार है, झूठा अहंकार है। इससे हमें बाहर निकलना है, मैं गाड़ी नहीं हूं, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ ड्राइवर। जब किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होता है धन का तो क्या कहता, मैं लुट गया। अरे कहां लुट गया, आपको वही है, आपका धन लुट गया, मैं खत्म हो गया। नहीं, देही कभी खत्म हो ही नहीं सकता, नहीं चिंतन की शुद्ध बनाना, नहीं गलत ही पाप का, आपका धन समाप्त हुआ है, आप समाप्त नहीं हुए, मैं बर्बाद हो गया। अरे आप कैसे बर्बाद हो सकते, हम सनातन है। तो ये झूठे अहंकार के कारण हम अपने आप को इस शरीर से संबोधित कर रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी का ड्राइवर हूं, गाड़ी मुझसे बिल्कुल अलग है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे हम हमेशा इस भौतिक जगत में पड़े रहेंगे। लेकिन फिर भी केवल ये समझ आना कि ठीक है मृत्यु हुई, क्या हुआ मृत्यु, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को चला गया, ये कहना आसान है। लेकिन हम देखते हैं हमारे किसी निकट संबंध की मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से हम सबको दुख होता है। इसलिए भगवान अगले ही श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं निश्चित रूप से दुख होगा, क्या करना उसको सहना। आप इस पर शस्त्र बोलते हैं शीतोष्ण सुख दुख का आगाम पान नित्य दास शस्त्र की, जो सुख दुख है ये अनित्य है, ऐसे है जैसे सर्दी और गर्मी के समान, इनको केवल सहन करो। हमारे पास और कोई उपाय नहीं है कि केवल बस सहन कर सकते हैं। अब दुखों को सहन करना सरल है कि सुखों को सहन करना सरल है, जैसे तो हम फिर पहली बार सुने कि सुखों को सहन करना होता है, सुखों को तो भोगना होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं माप स्पर्श घूमते हैं शीतोष्ण सुख दुख का, सुख को भी सहन करना है और दुख को भी सहन करना है, बहुत गहरी बात है। तो दुख को सहन करना आसान है कि सुख को सहन करना आसान, सुख को सहन करना आसान है, सुख को सहन करना मुश्किल। क्योंकि अगर व्यक्ति दुखी होता है उसका बहुत ज्यादा धन व्यापार में नुकसान हो गया, किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो गई, दुखी होकर बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो भक्तों की शरण में आएगा और भक्त बोलेंगे कोई बात नहीं, दो माला शुरू करो, कुछ गीता पढ़ो, तुरंत उसकी आज्ञा का वो
पालन करेगा कि मैं दुखी हूं, मुझे माला करनी चाहिए और उसको लाभ भी प्राप्त होता है।
और समझ लो कोई भौतिक जगत में जिसको सुख मिल गया वो आपके पास आया, वो छलता हुआ, प्रभु जी कभी लॉटरी निकल गई,
और आगे बोले कोई बात नहीं सब ठीक होता है, दो माला करो।
बोले क्या बात कर रहे हो,
मेरी लॉटरी निकल गया, बोले सब ठीक हो जाएगा, और क्या ठीक होगा, इसको सहन करो, समय समय की बात, कोई बात कुछ ही समय की बात है, माला करो सब ठीक हो।
तो उसको आवश्यकता ही महसूस नहीं होगी, क्या बात कर रहे हो आप, इतना ज्यादा मेरे धन प्राप्त हो गया और आप मेरे सब ठीक हो जाएगा, और क्या ठीक होगा, उसको सहन करना बहुत कठिन है। कुछ भी हो जाए, जो बिना टैक्स के भी बहुत से सुख होते हैं, उनका टैक्स हमें तुरंत नहीं देना पड़ता, हो सकता है बाहर तक देना पड़े, लेकिन हम विचलित हो जाते हैं, दुख में विचलित होकर हम भगवान की शरण में आएंगे, लेकिन जब सुख में विचलित होंगे तो हम भगवान से दूर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे देखा है, लोग मिलते हैं नए, बोलते हैं आके भी बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, बताते हैं उनको प्रचार प्रचार करते हैं थोड़ा सा कि माला कीजिए, मंदिर में आइए, आते रहते हैं और कुछ समय के बाद देखते हैं बिल्कुल आना बंद हो गया, कहीं दूर जन्माष्टमी में दिखाई दे रहे, आप दिखाई नहीं दे रहे, क्या हो गया, कह हो गया काम हो गया। काम हो गया जिसके लिए आए थे भगवान के पास, बहुत आप ही बड़ी कृपा रही पहुंची, क्या कृपा होगी, काम हो गया, हमारी नौकरी लग गई, बिजनेस चल पड़ रहा, सबके जरूरत है, तो आने की जरूरत ही नहीं है, वो सुख मिल गया, आप सहन उसको सहन ही नहीं कर पा रहे, जब दुख होता है उस आते हैं भगवान की शरण में, उसको सहन करना कठिन होता है उनके लिए, लेकिन वास्तव में देखा जाए दुख आसानी से सहन हो जाते हैं, लेकिन जो सुख है उसको सहन करना बहुत मुश्किल है, वो हमारे सर पे चला जाता है। वैसे भी देखा जाए जब हमारे ऊपर भौतिक दुख आए तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि दुख का मतलब है कि हमारा कर्जा कट रहा है, मतलब कि हमारे जो पिछले पाप थे वो समाप्त हो रहे हैं, और सुख आए तो हमें दुखी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास सुख आ रहा है इसका मतलब हमारे पुण्य समाप्त हो रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट कम हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम जानते नहीं है प्रकृति के नियमों को, तो हम उल्टा हो जाते हैं, दुखी और दुखी हो जाते हैं, सुख में और भोगने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए हम बहुत ही मंदिर में फंसे रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि बिल्कुल उनको सहना है, देखिए हम लोग तो इस भौतिक सुख को सहने की बात कर रहे हैं, जो षट गोस्वामी थे वो आध्यात्मिक सुख को सहने के लिए माला करते थे। हम इस भौतिक जगत में किसी व्यक्ति को बोले कि भौतिक सुख ज्यादा आ गया तो माला करो ठीक हो जाएगा, तो उसको विकार है क्या बात कर रहे, लेकिन जो षट गोस्वामी थे उनको जब आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती थी, जब वो भाव में चले जाते थे, तो उन भाव को रोकने के लिए वो मंत्र का जप करते थे, क्योंकि वो लगता था कि अगर वो हमेशा ही भाव में रहे तो अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन कैसे कर पाएंगे। महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी थी कि आप जाके दोबारा से लीला फलियों की स्थापना करो, शास्त्रों को लिखो और आचार्य की पूजा कर इनकी स्थापना करो, ये आज्ञा का पालन कैसे करते, शास्त्रों को कैसे लिखते, कैसे लीला फलियों को ढूंढते अगर वो हमेशा ही भाव में रहते, इसलिए वो क्या करते थे, गिनकर संख्या पूर्वक नाम गान काला बसा, वो गिनकर माला करते थे ताकि अपने भावों को रोक सके और गुरु की आज्ञा का पालन कर सके। दिखा रहे हैं वो तो आध्यात्मिक सुख को सहने के लिए भी भगवान के नाम को सहारा देते हैं, तो हम लोगों को भी चाहे सुख आए या दुख आए उससे विचलित नहीं होना है। इसके अगले ही श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, यम ही ना व्यथंती इति पुरुषम पुरुषर्षभा सुख दुखम सुखम निरसा अमृत वाय कल्पते, कि जो सुख और दुख में समान रहता है और इनसे विचलित नहीं होता है, ऐसा धीरे व्यक्ति इज एलिजिबल फॉर डिप्रेशन सा अमृत वाय कल्पते, वो निश्चित रूप से ही अमृतत्व को प्राप्त करता है। तो यही हमारी परीक्षा है कि हम सुख और दुख में विचलित हुए बिना हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहे। और देखिए जो ये शरीर है वास्तव में ये एक डेड मशीन के समान है, कुछ भी नहीं है, निर्जीव है शरीर, जड़ है, पांच तत्वों से बना हुआ, और एक भौतिक के तीन प्रकृति के गुणों के द्वारा इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है बस, और जो जीव आत्मा है बिल्कुल इससे भिन्न है। भगवान की कई कौन से अध्याय में बता रहे हैं कि जीव भौतिक प्रकृति से बिल्कुल भिन्न है, हाँ सातवें अध्याय के चौथे पांचवें श्लोक में बता रहे हैं, पहले बता रहे भूमि आपको अनल वायु खामना बुद्धि है, अहंकार प्रकृति अष्ट,
परमेश्वर बताया अपरा यह मिता तू विधि प्रगति भेद बना जीव भूता महाभाव ने जगत अपरा इस अपरा प्रगति के बिल्कुल परे है जीव जो इस भौतिक जगत का शोषण कर रहे हैं। तो हम इस भौतिक प्रगति से बिल्कुल परे हैं, बिल्कुल परे। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हम इस भौतिक जगत में इसलिए नहीं आए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिल्डर बनना है, लॉयर बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। नहीं, हमको ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। हमको ये मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कह रहे हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार कर सके। ये है हमारे को मनुष्य देह मिलने का उद्देश्य, खासकर भारतवर्ष। तो भाग्य की बात यह है, जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं हमें बताया जाता है कि आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, लॉयर बनोगे, बिजनेसमैन बनोगे। वास्तव में देखा जाए तो एक शरीर की विकास करने का ही हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि बहुत बड़ा व्यवसायिक बनना है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, उसी के समान हुआ क्योंकि शरीर कार के समान है कि मैं बड़ा होकर मर्सिडीज बनूंगा, सोनाटा बनूंगा, बोइंग 747 बनूंगा, ये क्या मतलब हुआ है ना। इस सब समाप्त हो जाएंगी चीजें और फिर इसी शरीर की रक्षा के लिए हम इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं 5 लाख 10 लाख 4 लाख 2 लाख और इस शरीर का क्या होगा, इसको जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगी, दफना दिया जाएगा तो मिट्टी बन जाएगी और कुछ पार्सी को तो इसको फेंक देते हैं, चीले आगे खाती है तो मल बन जाएगा। तो हम ये जो पूरा इंश्योरेंस कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं किसकी रक्षा के लिए, मल की, मिट्टी की और राख की। लाखों रुपए का जो हम इंश्योरेंस कर रहे हैं किसके लिए, इस शरीर के लिए जो वास्तव में क्या है, मल मिट्टी और राख का दूसरा रूप है, बाद में मल में जाएगा, मिट्टी में जाएगा या राख में जाएगा, उसका इंश्योरेंस कर रहे हैं। और जो देही है, जो परमानेंट है, उसकी कोई चिंता ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है उसकी कि अगला शरीर मुझे क्या मिलेगा, कुत्ते का, बिल्ली का, कीड़े का, पक्षी का, कोई चिंता नहीं है उसके इंश्योरेंस के बारे में। और जो निश्चित है, देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं अपने सामने सबका यही हाल हो रहा है शरीर का, उसकी इतनी चिंता करके उसके अलग अलग से योजनाएं बना रहे हैं, कितनी प्लानिंग कर रहे हैं इस शरीर को संभाल के रखने की, जो कि कभी हम संभाल भी नहीं सकते। तो इस बात को हमने समझना है कि हम इससे बिल्कुल परे हैं। और टेटरी ऑपरेशन में बताया गया है कि हरेक जीव की 5 अवस्थाएं हैं, 5 तरह की चेतनाएं हैं। वो चेतनाएं हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में। अन्नमय चेतना का अर्थ है कि जब हमारी पूरी की पूरी चेतना यह रहती है कि मुझे भोजन चाहिए, बस जैसे एक बच्चा या एक पशु केवल भोजन की तलाश है, अन्नमय। तो अन्नमय चेतना में क्या करेंगे, हम ज्यादा ज्यादा आर्थिक विकास करेंगे कि हमारे आहार जब है मैं तो उनकी आवश्यकताएं पूरी होता रहे, तो यह अन्नमय चेतना। इसे थोड़ा ऊपर निकलेंगे तो आएगी प्राणमय चेतना, जब मेरी आहार निजर है मैं तो मुझे चिंता अपने चाहूंगा मेरी जीवन बचा रहे, कोई मुझ पर आक्रमण ना करे, मेरे जीवन का नुकसान ना हो, जीवन मेरा बचा रहे, तो मैं प्राणमय चेतना में स्थिर हो जाता हूं। और उसके बाद है मनोमय, जब मेरे प्राण भी सुरक्षित हो गए फिर मैं कोई मानसिक चिंतन करता हूं कि आखिर इस सृष्टि की रचना किसने की, ये सब कहां से आया, क्या हो रहा है, मैं कौन हूं, किधर से आया हूं। तो मनोमय फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन में लग जाते। और उसके बाद जब मन की चिंतन करते 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 हम कुछ हमें आध्यात्मिक स्मृति प्राप्त होती है और ये ज्ञान हमें शुरू हो जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, तो कहती है विज्ञान में चिंतन, हम विज्ञान में मिलते हैं। लेकिन ये भी पूर्ण नहीं है, इसके बाद जो 5वीं अवस्था आती है वो है आनंदमय। फिर हमें मालूम चल जाता है कि मैं जीव हूं, मैं भगवान का अंश हूं, मुझे भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए और इसी में मुझे आनंद की अनुमति मिलेगी, आनंद में प्रयास का। तो ये है आनंदमय चेतना। तो प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है, इस मनुष्य देह में रहते हुए प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि हम अपने आप को आनंदमय चेतना तक विकसित करें। और इसी आनंदमय चेतना की तुलना भगवान ने गीता में ब्रह्मभूत अवस्था से की, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, तो उसको फिर किसी तरह की चिंता नहीं, किसी तरह का शोक नहीं। जब तक हम विज्ञान में चेतना तक रहेंगे तो हम इस भौतिक जगत में हमेशा भय मोह और शोक में लगे रहे। इस भौतिक जगत के तीन लक्षण है, भय मोह और शोक। हमें हमेशा डर रहता है, मोह रहता है और शोक होता रहता है। और जैसे हम आनंद में चेतना में आएंगे, हम इस शोक भय और मोह से ऊपर उठ जाएंगे। तो हमें इस आनंद में चेतना में आकर इस शरीर से पूर्ण रूप से अनासक्त होना चाहिए। मैं एक शरीर नहीं, जीवित स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास। मेरी वास्तविक स्थिति अपने आप का भौतिक या मानसिक विकास करना नहीं है, मुझे अपना आत्मिक विकास करना है। श्रीला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि हम सबको हमेशा अंतर्मुखी होना चाहिए। Until unless we are introspective, we cannot be successful। जब तक आप ना हमेशा अवलोकन नहीं करते रहेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा आत्मिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी चेतना को विकसित नहीं कर पाऊंगा। भक्ति का जो विधि है ये बहुत अंतरंग विधि है। बाह्य रूप से हो सकता है कि हम तरह तरह की सेवाओं में लगे रहे, लेकिन उस सेवा के प्रति अगर हमारा सही एटीट्यूड नहीं है तो हमारा आंतरिक विकास नहीं होगा। हम हमेशा इसी अन्न में, मनो में और प्राण में, चेतना में ही रहेंगे, भक्ति में लगे होने के बावजूद भी, क्योंकि हमने अपना अवलोकन बार बार नहीं किया। तो हमें अपना अवलोकन करते रहना चाहिए। और ये अवलोकन करने की शक्ति भी हमारे में नहीं है तो हमें वरिष्ठ वैष्णवों के और गुरु के बिल्कुल संरक्षण में रहते हुए अपना ऑपरेशन कराना चाहिए। बताया गया जो वरिष्ठ वैष्णव है, दे आर द डॉक्टर्स ऑफ द सोल, वो आत्मा के डॉक्टर है, वो हमारी बीमारी को समझेंगे। तो इस ढंग से हमें अपने आंतरिक विकास की चिंता रहनी चाहिए। बाहरी विकास में हो सकता है कि हमें नए नए पद भी मिलते रहे और हम तरह तरह की सेवाएं भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल खोखले हों। हमारी चेतना अभी भी अनमय, तो अति आवश्यक है कि अपने आप को आनंद चेतना में हमें विकसित करना है। तो अपने आप को हमें हमेशा इंट्रोस्पेक्शन करते रहना पड़ेगा। तो श्री प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि हम इस शारीरिक चेतना से बिल्कुल अनासक्त तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप को भक्ति में लगा दें। कैसी भक्ति? माम जो अभिचार्य न भक्ति योगे न सेवत सा गोड़ा समीत आदान ब्रह्म भूया कल्पते। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अविचारणी, बिना रुकावट के 24 घंटे, 24 घंटे हमने भक्ति करनी है। तैयार है आप सब? 24 घंटे, तभी जाके हम इस भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। और जब हमने कहा 24 घंटे, जब ये पड़ा तो एक बहुत बड़ा बोझ सा लगता है, बहुत बड़ा बोझ। बहुत कम लोगों में हाथ ही खड़ा देखे, क्या बात करें 24 घंटे? कईयों को तो लग रहा है प्रभुपाद कैसी बात कर रहे हैं, ये असंभव है क्या 24 घंटे? असंभव है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है 24 घंटे भक्ति करना। प्रभुपाद कोई बात असंभव बात नहीं लिखेंगे, शास्त्रों में कोई भी इम्प्रैक्टिकल बात नहीं लिखी जाएगी। और ये मनुष्य जो मिला ही इसीलिए 24 घंटे भक्ति करने के लिए, तो हम सबको 24 घंटे भक्ति में झुंडना है, तभी हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर हो पाएंगे और तभी हम आनंद में चेतना में आ पाएंगे और तभी हमेशा आनंद में रहेंगे। कौन सा ऐसा मूर्ख जीव होगा जो आनंद में नहीं रहना चाहेगा, जो ये कहेगा बस 2 घंटे आनंद चाहिए, बाकी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, थोड़ा बहुत दुख भी रहना चाहिए। कई लोगों ये प्लस भी है, प्रभु जी जब तक दुख नहीं होंगे तो सुख का हमें इम्पोर्टेंस नहीं मालूम चलेगा, ये दुख तो आते रहने चाहिए, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बनते बनते हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन गए हैं। कितने ही जीवनों में हम ये दुख भोगते आए हैं, कंप्रोमाइज करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, माँ के घर में तो रहना है, 9 महीने रहेंगे, कीड़े मकोड़े खाते हैं खाते रहे, शरीर चलता है चलने दो, सह लेंगे, तो मुझे बाद में देखो कितना आनंद है, 42,000 बिच्छू डसेंगे डसेंगे, करने को मृत्यु ही तो है, सब मर रहे मैं भी मरूंगा, कौन सी अलग बात है, बीमार होने हॉस्पिटल में चले जाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस करवा के बूढ़े हुए कुछ ही साल है बुढ़ापे के सह लेंगे, लेकिन बीच में कितना आनंद है देखिएगा। तो ये हम सोचते रहते हैं कि सुख दुख तो लगा ही रहेगा, तरह तरह के ऐसे फिल्मी गाने भी बनते हैं, सुख दुख आते रहेंगे तो सहते रहो सह रहे, नहीं ये नहीं सहना हमने, बिल्कुल नहीं सहना। हमने इन समस्याओं का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना है। ये हमारी यही हमारी इंटेलिजेंस है, इनसे विचलित नहीं होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं बुरा क्यों हूं, क्यों मैं मरूं, क्यों मुझे बीमारी आए, क्यों वाय, मैं सनातन हूं, अजन्मा हूं, तो मेरा जन्म क्यों हो, सोचना चाहिए क्यों भाई। जब एक आध्यात्मिक जगत है जो मेरा असली घर है और भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां पे, क्यों ना जाऊं वहां पे, क्यों बार बार मरूं, क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, जब असली आनंद है और वो मेरा जन्मशील अधिकार है और वहां जाना अति सरल है और नरक में जाना अति कठिन है। अगर हमें नरक में जाना है तो कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। इस भौतिक जगत में हम जितने भी देख रहे हैं लोग आज भागदौड़ कर रहे हैं, मेट्रो में, अपनी गाड़ियों में, स्कूटरों में, साइकिलों में, रिक्शा में, पैदल भागदौड़ धूप में कर रहे हैं, ये सब भागदौड़, ये सब तपस्या किस लिए कर रहे हैं, सबके सब नरक जाने की बोर लगी हुई है। पहले मैं जाऊंगा नरक, नरक है कौन पहले जाएगा नरक, क्योंकि नरक जाने के लिए आपको व्यभिचार करना पड़ेगा, आपको मदिरा पीनी पड़ेगी, आपको मांस भक्षण करना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा। धन अर्जन करने के लिए हम सब ये कर रहे हैं और होड़ लगी हो रही है, और भक्ति करने के लिए कुछ भी नहीं करना, तुलसी का एक दल कृष्ण को अर्पण करना है और चले गए हम भगवत नाम बताइए। किसने बताया है कि 16 माला का जब 4 नियम का पालन करने के लिए आपको मर्सिडीज गाड़ी की आवश्यकता है, बताइए कौन से शास्त्रों में लिखा है, कहां लिखा है कि कम से कम घर में 4 कमरे होने चाहिए तभी हो पाएंगे 16 माला का जब 4 नियम होगा, किसने बताया, बताइए किसी शास्त्र में लिखा होगा। कितना सरल है, सरल जीवन जिए और भक्ति करके तुरंत हम भगवधाम जा सकते हैं। प्रहलाद मदद करें तब प्रयासों न कर सकते हम, ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं है, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करो, क्यों अपने जीवन को बर्बाद करो। तो 24 घंटे भक्ति में लगना बहुत सरल है और इस ढंग से हम इस प्रकृति के तीन गुणों से परे हो सकते हैं। और फिर बताया गया कि जहां हमारी आसक्ति होती है 24 घंटे आराम से हम लग सकते हैं, और जहां हमारी आसक्ति होती है हम बाह्य स्थितियों से बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। उदाहरण आता है इसमें बिल मंगल ठाकुर जी का। बिल मंगल ठाकुर जी एक वेश्या से आसक्त थे जिनका नाम क्या था, चिंतामणि। तो एक दिन बहुत तेज वर्षा हो रही थी और उनको नदी पार करके जाना था वेश्या से मिलने, और नदी में बाढ़ आ रही थी, कोई भी नहीं था, तूफान और बारिश हो रही है। बिल मंगल ठाकुर रात्रि के समय निकल रहे हैं अकेले और नदी पार करने के कोई नाविक दिखाई नहीं दे रहा, तो एक मृतक शरीर उसको नाव समझ के पार कर लिया, उसका सहारा लेके पार कर लिया। और वैसे ऊपर थे उसका कमरा, तो एक सांप नीचे लटक रहा था, सांप को रस्सी समझ के ऊपर पहुंच गए, कितना बड़ा खतरा उठाया और पहुंच गए वैश्या के पास जितनी आ सकती। चिंतामणि ने कहा कि तुम इस स्थिति में मेरे पास आ गए, और जब उसने खिड़की खोलकर देखा तो नीचे सांप था, सांप को पकड़कर ऊपर आ गए। तो बोला इतनी आसक्ति अगर तुमको मेरे में है, इसकी आसक्ति को तुमने हरि के प्रति लगाया होता तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता। तो इसी ढंग से हम देखते हैं जो बिल मंगल ठाकुर को एक वेश्या से आसक्ति थी, तो एक मृतक शरीर को पकड़ के नाव पार कर रहे हैं और एक सांप को रस्सी समझकर उसके ऊपर पहुंच वेश्या के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अगर भगवान में आसक्ति होगी तो हम भी ये छोटे मोटे सुख दुख से बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, बिल्कुल विचलित नहीं होंगे। और बहुत से उदाहरण है हमारे पास, ज्वलंत उदाहरण है, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी जब का शरीर छोड़ने लगे थे इतना उनको कष्ट था, लेकिन फिर भी वो अंतिम समय में भी क्या कर रहे थे, भागवतम का अनुवाद कर रहे थे और डॉक्टरों से पूछ रहे थे कि हाउ आर यू डॉक्टर। डॉक्टरों की आंखों में आंसू आ गए कि कैसे व्यक्ति है, वो कुछ नहीं हो रहा, मुझसे पूछ रहे हैं। वो ज्वलंत उदाहरण है हमारे पास। तो सारा का सारा ये निर्भर करता है कि कहां पे हमारी आसक्ति है। तो कुछ कार्य हमें आसक्ति से करने चाहिए और कुछ कार्य हमें कर्तव्य परायण होकर करने चाहिए। तो जो आत्मा के कार्य हैं वो हमें आसक्ति से करने चाहिए जो शरीर के कार्य है वो हमें कर्तव्य से करने चाहिए। आपके शरीर को मिला हुआ है, शरीर का हमें अपने परिवार का भी पालन करना है, बिजनेस भी करना है, नौकरी भी करना है, ये हमें कर्तव्य रूप में करने चाहिए। और जो आत्मा के कार्य है, जो भजन है, उसको हमने आसक्ति से करना चाहिए। दुर्भाग्यवश इस समय हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। हम शरीर के कार्यों में पूर्ण रूप से आसक्त हैं, अपने व्यवसाय में, अपने परिवार में पूर्ण रूप से, लेकिन उसके अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देता कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे घर, बस इसके बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं देता। ये सारा जगत मेरा, यही जगत है, और आसक्ति होती है। और जो आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं आत्मा, वो हम फॉर्मेलिटी, औपचारिकता, कर्तव्य कर लेना चाहिए। वो वाला, चाव वाला, सोना वाला, दीक्षा लिए तो करना ही पड़ेगा, बस कर्तव्य, बस मंदिर आए प्रणाम करना चाहिए। लेकिन आसक्ति सारी परिवार से, व्यवसाय से, सब रिश्तेदारों से, इसीलिए हम इस बॉडी से कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। हमें बिल्कुल उल्टा करना है कि परिवार से और जितने भी भौतिक कार्य हैं, हमारे शरीर से संबंधित जो कार्य हैं, उसको कर्तव्य से पूर्ण करें और आत्मा के कार्य को आसक्ति से करें। पूरा मत मानिए, हम लोगों को जब हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा होता या घर में कोई बीमार होता है, कई बार ये रातों को नींद नहीं आती, उठ के बैठ जाते हैं, सर पे हाथ रख के, क्या होगा, बेटे की शादी है, घर नहीं है, तरह तरह की समस्याएं हैं, बड़े परेशान होकर बैठ गए हैं। लेकिन कभी हमने रात को ऐसी नींद खुली है और ऐसे परेशान होकर बैठ गए कि सोलह माला का जप नहीं हो रहा, सही गुरु के आज्ञा का पालन नहीं हो रहा, भक्तों से प्रेम नहीं है, या उस भक्त का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उस भक्त से मेरी मित्रता ठीक क्यों नहीं हो रही, सास और बहू में झगड़े होते हैं, वो तो बहू रात पर सोती नहीं है, रोती रहती है। तो कभी हम हुए हैं कि भक्तों के बीच में रह रहा हूं, अभी तक मेरा उनसे प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, सालों साल बीत गए, सालों साल बीत गए, भक्तों के बीच में आ रहे हैं, हरे कृष्ण करके जा रहे हैं, बस फटाफट घर पहुंचे, परिवार वालों के साथ हंसेंगे, खेलेंगे और यहाँ पे फैसला करेंगे, तो कैसे हमारा उद्धार होगा। अभी भी अपने को शरीर समझ रहे हैं, बस शरीर शरीर से आसक्ति है और आत्मा फॉर्मेलिटी है, ये आत्मा वास्तविकता है, शरीर फॉर्मेलिटी है, ये हमारी प्राइमरी नीड है, आत्मा की जरूरत हमारी प्राइमरी जरूरत है। इस बात को हमने समझना है, ये बता रहे हैं कि हम शरीर से बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, तो आत्मा के विकास के लिए, आत्मिक विकास के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो कैसे हम इस स्थिति को बिल्कुल उल्टा कर सकते, कैसे कैसे हम आत्मा में आसक्त हो जाएं और शरीर को केवल कर्तव्य रूप से करें। श्रील भक्ति श्रवण सभी ठाकुर जी इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारी सारी समस्या की जड़ एक है, और वो है, आप ध्यान को सुनिए, वो इसलिए वो समस्या ये है कि हम अपने गुरु को साधारण पुरुष समझते हैं। हम ये नहीं जानते, हम ये मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं कि गुरु साक्षात हरि है। आपको आप हो सकता है ये बात सोचने में बिल्कुल अनकनेक्टेड लग रही हो कि कैसी बात कर रही है आपने, कि कहां हमें आत्मा के विकास करना है, भौतिक जगत से अनासक्त होना है, वो कहां गुरु को साक्षात हरि, कुछ संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। लेकिन इसका थोड़ी हम विचार करें तो संबंध साफ साफ स्थापित होता है। कैसे, दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में क्या है, व्यवसाय कहा होती एक गुरु नंदना, इसके तात्पर्य में श्री रविशंकर चक्र ठाकुर जी क्या बता रहे हैं कि एक शिष्य के लिए गुरु की आज्ञा लाइफ एंड सोल होनी चाहिए, उसके प्राण होने चाहिए, गुरु की आज्ञा उसके प्राण होने चाहिए। जब किसी के प्राण गुरु की आज्ञा होंगे तो निश्चित रूप से उसकी गुरु से आसक्ति हो जाएगी, और फिर अगर उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मुझे गुरु की आज्ञा को पूर्ण करना है, तो अपने आप बाहरी चेतना से मुक्त हो जाएगा। यह प्रभुपाद इसके साक्षात उदाहरण है।
श्री प्रभुपाद को किसी ने बोला कि आप लोगों को कृष्ण की कृपा हो रही है, तो प्रभुपाद कहते आई डोंट नो कृष्ण, आई ऑनली नो भक्ति सिद्धांत सत्संग। बोले कि मेरी समस्या का एक ही रहस्य है कि मुझे अपने गुरु के आदेशों में पूर्ण विश्वास है। और बोले कि मैं कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद भक्ति सरस्वती ठाकुर जी को देख रहे हैं साक्षात हरि के रूप में। श्रीला प्रभुपाद ने कहा भी है कि माई गुरु महाराज इज वैकुंठ में, ही हैज कम फ्रॉम गोलक वृंदावन। साफ साफ वो बोल रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि साक्षात हरि के समान है। इसीलिए उनकी व्यवसायित्व का बुद्धि है, जो उनके आदेश है वो उनके प्राण है। हम लोगों को भी आदेश मिलते हैं गुरु या गुरु के प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन हम उसको अपना जीवन नहीं समझते, क्योंकि समझते हैं कि ये भी एक पूरी तरह साधारण मनुष्य है। और जब तक हम ये समझते नहीं कि हमारे ये साधारण मनुष्य है, हमारा उन आज्ञाओं के प्रति कमिटमेंट नहीं होगा, वो डेडिकेशन नहीं होगा। तो उन आज्ञाओं का हम पालन नहीं करेंगे तो कैसे इस भवबंधन से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, नहीं करते रहेंगे। साफ साफ है, हो गया ना समझ। इसलिए हुआ है, वेदों का वाक्य है कि सर्वस्वम गुरुवे ददायत, सर्वस्वम। जब तक हम अपना शरीर, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना नाम, अपना यश सब कुछ गुरु को अर्पण नहीं करेंगे, हम इस भौतिक चेतना में ही लिप्त रहेंगे। जब तक हम सब कुछ अपना शरीर, अपना मन, अपना धन, अपनी बुद्धि, अपना यश, अपना नाम गुरु को अर्पण नहीं करेंगे, हम भौतिक चेतना में ही लिप्त रहेंगे, भौतिक चेतना में ही लिप्त रहेंगे। सब कुछ गुरु और कृष्ण के भोग के लिए है, मेरे भोग के लिए नहीं है, मुझे केवल प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। तो ये चेतना जब हम धीरे धीरे विकसित करेंगे, तभी हम इस शरीर से और शारीरिक चेतना से अनासक्त हो पाएंगे। बहुत से उदाहरण है हमारे पास, देखिए ना, क्या उदाहरण देते हैं। श्री हरिदास ठाकुर जी का कि संग से उन्होंने शरीर छोड़ा, आप सब जानते ही हैं। हरिदास ठाकुर जी के पास गोविंद जी आए प्रसाद लेकर जगन्नाथ जी का, तो देखा वो लेटे हुए जप कर रहे हैं, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हैं। बोले क्या हुआ? बोले मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बोले प्रसाद को प्रसाद कैसे ले सकता हूँ, अभी तक मेरे जो मेरे नंबर पर अपडाउन है तो मैं इसको पाने वाला करता हूँ, पूरा ही नहीं हो तो मैं खा कैसे सकता हूँ, लेकिन आप प्रसाद लेके आए हैं तो मैं उसको मना भी नहीं कर सकता कि थोड़ा सा मैंने खाया। तो गोविंद ने जाके महाप्रभु को बताया, महाप्रभु आए, बोले हरिदास क्या समस्या है? बोले शरीर तो ठीक है, मेरे मन और बुद्धि की समस्या है। बोले क्या हो गया? बोले मैं जप नहीं कर पा रहा जितना मुझे करना है। तो महाप्रभु ने कहा, रहे आप तो नामाचार्य हो, आपने युग धर्म की स्थापना कर दी, आप क्यों इतनी माना कर रहे हो? एक से बारह माने क्या आवश्यकता है, कम कर दो, कोई आवश्यकता नहीं। हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप तो साक्षात कृष्ण हैं, आप इस तरह कृपा कीजिए, मैं तो बहुत अधम हूँ, पति हूँ, जामन के परिवार में मेरा जन्म हुआ है और मैं जानता हूँ कि शीघ्र ही आप अपने जिला समाप्त करके जाने वाले हैं और मैं ये नहीं देख पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि आप लीला समाप्त करने से पहले मैं ये शरीर छोड़ दूँ, और मेरी हृदय की इच्छा है कि शरीर छोड़ने से पहले आपके चरण कमल मेरे हृदय पे हों और आपका चंद समान मुख मेरे आंखों के सामने हो और मेरी जीवा पे आपका नाम हो, तब मैं शरीर छोड़ूँ। तो अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आते हैं, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और हरिदास ठाकुर जी उनके चरण कमलों को अपने हृदय में रखते हुए उनके मुखार का दर्शन करते हुए और श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य करते करते अपने प्राण त्याग। ये है समाधि, पूर्ण रूप से समाधि। चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण रूप से वो दी है, श्रीमती श्री प्रभुपाद जी ने भी ऐसे शरीर छोड़ा। तो ये तो बहुत ऊंचे ऊंचे हमारे व्यक्तित्व है, तो कहा जाता है इनका तो ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, और बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के शिष्य ने भी अगर इस बात को अपने जीवन का सार बना लिया है कि गुरु की आज्ञा ही मेरा जीवन है, तो बहुत से उदाहरण देख सकते हैं रशिया में डिस्ट्रीब्यूटर किताब बांधते बांधते उनका एक्सीडेंट हो गया और बताया जाता है इतना बुरे से एक्सीडेंट हो गया कि शरीर से आंटे बाहर निकल आई, गर्दन शरीर से अलग होने वाली थी बिल्कुल। तभी वहां पे एक रेस्क्यू पुलिस की गाड़ी पहुंची, पुलिस ने उसको उठाया और क्या किया उन्होंने, स्ट्रीट छोड़ने से पहले गीता ली और हाथ से पुलिस को दी कि कृपया इसको लीजिए, इससे आपके जीवन में आनंद आएगा और ये कहकर शरीर छोड़। कल्पना कीजिए एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर पुस्तक वितरण करने वाला साधारण सा दिखने वाला था, क्या समाधि है कि नहीं बताइए। हरिदास ठाकुर से ये कम है वो, जब श्री प्रभुपाद से उसकी कम उपलब्धि है। पुस्तक वितरण करते करते ही उसे गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है कि ये लीजिए पुस्तक, इससे आपको असली आनंद की प्राप्ति होगी। तो क्यों नहीं आ सकते, हम भी इस अवस्था में अवश्य पहुंच सकते हैं। हम भी जो श्री प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि समाधि और समाधि ही उच्चतम योगी है, इसको समाधि की अवस्था आ गई, वो उच्चतम योगी है, तो हम भी निश्चित रूप से इस अवस्था में पहुंच सकते हैं। हमें बस गुरु की आज्ञा पे दृढ़ विश्वास होना चाहिए और गुरु की आज्ञा को पालन करना ही हमारा जीवन होना चाहिए। और इस अवस्था में हम तभी पहुंचेंगे जब हमें जाने कि हमारे जो गुरु हैं वो जगत गुरु हैं, वो कोई साधारण जीव नहीं है। देखिए ना, यही गलती हमने धाम में की थी। हमने कहा कृष्ण तुम क्यों भोक्ता बनते हो, मैं भोक्ता बनूंगा, कृष्ण और अपने में कोई अंतर नहीं पाया तो हम यहां आ गए। अब यहां कृष्ण के प्रतिनिधि मिले तो बोले आप और उनमें क्या अंतर है, आप भी साधारण मैं भी साधारण, तो फिर पड़े रहेंगे। देखिए ना, वहां कृष्ण से हम लड़ाई करके आए कि आप क्यों भोक्ता मैं भोक्ता, तो यहां आ गए। फिर हमें वापस लाने के लिए कृष्ण अपना प्रतिनिधि भेजा कि सुधार के लाओ इसको, फिर प्रतिनिधि से भी लड़ाई कर रहे हैं कि आप कैसे सदा आप कैसे भगवान हो सकते हैं, यार आप भगवान के साथ थोड़ी हो, आप तो साधारण हो, भोला भला आप करते मैं करता हूँ, जानिए माप मैं आपकी जगह चाहते हो मैं जानता हूँ, आपको कम शुरू हो तो मेरे ज्यादा शुरू हो जाते हैं, तो कौन से शुरू हो, मैं वहां दीक्षा ले भी कोई बात चलता है, मान करूंगा सम्मान करूंगा लेकिन साक्षात हरी नहीं मानूंगा। भक्तिनाथ हरि ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं जब तक हम गुरु को साक्षात हरि नहीं मानेंगे हम ये जान नहीं पाएंगे कि हम कितने तुच्छ हैं, हम प्रेरणा की सुनिश्चित की स्थिति में आ ही नहीं पाएंगे। और जब तक हम इस स्थिति में आ ही नहीं पाएंगे, हम निरंतर जब कर ही नहीं पाएंगे तो कैसे हमारा उद्धार होगा। हमेशा हम इस भौतिक चेतना में ही लिप्त रहेंगे। देखिए कितनी बड़ी बीमारी से हम ग्रसित हैं, कितनी बड़ी बीमारी हम सब हैं, तो इसलिए इससे मुक्ति पाने का कारण यही एक ही उपाय है कि गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास और उनकी आज्ञा का सख्ती से हम पालन करें। जैसे उस दिन इतने महान को भी ये बता रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों से उठने का एक ही वो उपाय है, श्री प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का दृढ़ता से पालन करें। श्री प्रभुपाद ने खुद कहा है कि उन्हीं को अपना शिष्य कहूंगा जो कि मेरी आज्ञा का पालन करेगा। तो श्री प्रभुपाद जी आज्ञा का दृढ़ता से पालन करेंगे तो हम भी समाधि की अवस्था में पहुंच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम भी अगर हम 24 घंटे गुरु की आज्ञा का स्मरण करें और उनके अनुसार अपने जीवन को चलाए, निश्चित रूप से 24 घंटे भक्ति करना बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। बस एक सिद्धांत को याद रखना है कि क्या कि मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, मेरे गुरु सबसे महान।
जब वो बाजी भगवदगीता के 18वें अध्याय के 55वें या 56वें श्लोक के साथ पहले साफ साफ बता रहे कि कोई भी कार्य आध्यात्मिक बन जाएगा अगर वो गुरु साधु शास्त्र के प्रमाणित हो जाए। कोई भी कार्य अगर हम अपने जीवन के हर कार्य को आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं तो उसको गुरु से प्रमाणित करा लीजिए, बस फिर हमारी जिम्मेवारी नहीं है। वो दिखने में बहुत ही लग सकता है कि मैं बिजनेस कर रहा हूं, धन कमा रहा हूं, परिवार का पालन कर रहा हूं, लेकिन गुरु के आदेशों के अनुसार है तो वो आध्यात्मिक भक्ति हो गई। अर्जुन ने तीर चलाए, अपने शत्रुओं को मारा, वो भक्ति हो गई क्योंकि उसने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। उसी ढंग से आप सब गृहस्थ आश्रम में हैं, अपने परिवार का आपको पालन करना है, परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कृपया उसको शास्त्रों के अनुसार चलाइए। और इसमें पति और पत्नी दोनों को सहयोग देना चाहिए, जानना चाहिए कि सब के सब जीवात्माएं हैं। इस भौतिक जगत में दुख आएंगे ही आएंगे, सुख आएंगे ही आएंगे, उनसे विचलित नहीं होना। उनसे अगर विचलित हो रहे हैं तो और दुखी होंगे, समझने का प्रयास कीजिए। दुखों से विचलित होकर हम गुरु की आज्ञा को साइड में रहते हैं। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे दुख से बड़ा किसी का दुख नहीं। सर्वे कर लीजिए आप, हर व्यक्ति बोलेगा आप नहीं जानते क्या दुख है मुझे, आप नहीं जानते ना क्या बताऊं आपको। और वास्तव में हरे का दुख सबसे बड़ा है, और वास्तव में किसी के भी दुख का समाधान है ही नहीं। जब लोगों की समस्याएं सुनते हैं तो समस्याएं इतनी जटिल होती हैं, इतनी जटिल होती है, कोई समाधान नजर आता ही नहीं है, होता ही नहीं समाधान वास्तव में। और उनका दुखी होना ठीक भी है, लेकिन उस दुख से निवारण के लिए खुद प्रयास ना करें, चुपचाप भगवान की शरण ग्रहण करें, बस गुरु की आज्ञा का पालन हर अवस्था में करते रहे। ये बहुत ही जगह शिल्प हुआ कहते हैं सागर के समान है। सागर में कुशल से कुशल जो तैराक है वो भी इसको पार नहीं कर सकता। उसको क्या करना है, चुपचाप दो हाथ हटाने चाहिए और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है, जुगाड़ नहीं करने हैं कि अब समस्या नहीं, अब मैं नया घर ले रहा हूं उसमें समस्या खत्म हो जाएगी, अब मेरा विवाह होने वाला तो ये समस्या खत्म हो जाएगी, अब हमारा मेरा काम धंधा बढ़ने लगा है, व्यवसाय हो रहा है, अब समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप नहीं जानते, अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं ना, अभी ठीक हो जाएगा। अब करते रहो चेंजेस, कुछ भी ठीक नहीं होगा। एक समस्या खत्म होगी दूसरी पैदा हो जाएगी, उसको कर यहां से हो जाएगा, बस वही करते रहेंगे, बस यहां दवाई यहां से खड़ी हुई यहां दवाई, बस नाचते रह जाएंगे, बिल्कुल भूल जाओ। ये बहुत ही दुखाले है, समस्या आएंगी आएंगी, हर अवस्था में हम गुरु की आज्ञा का पालन करें तो हमारा अधिकार बन जाएगा कि हम भगवत धाम वापस जाएं। कौन कर रहे ये प्रार्थना, ब्रह्मा जी का है। दत्ते अनुकंपा सुसूक्ष मानो भुंजन रात प्रतम विपाक हितवा बहुबी विदान नमस्ते जीवित यो मुक्ति पास दया पाक, कि जो प्रतीक्षा करता रहता है भगवान की दया की, और हर परिस्थिति में जो उसके दुख आते हैं बोलते मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, उनको सहते हुए हृदय से वाणी से और शरीर से भगवान की सेवा में लगा रहता है, ब्रह्मा जी कहते हैं उसका अधिकार बन जाता है भगवत धाम वापस जाता है। हम छोटे छोटे कष्टों से विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे कष्टों से। तो जीवन के लक्ष्य को हम समझें, और हमारे पास बहुत से उदाहरण है। कष्ट किसके पास नहीं आए, तुकाराम जी, तुकाराम जी की पत्नी से नहीं बनते थे। अब कई पुरुषों को कष्ट होता है कि पत्नी का कष्ट है कि कुंडलिनी में लिखा रहता है स्त्री के द्वारा कष्ट नहीं पाए तो बोलते हैं आप नहीं जानते हमारे को हमारी स्त्री कितना तंग करती है। तो तुकाराम जी की पत्नी उनको मारा करती थी तो बहुत प्रसन्न हुआ करते थे, अरे वाह अब शरीर थोड़ा ठीक हो गया और चुपचाप भक्ति में लगे रहते हैं। मीरा देवी को ससुराल वाले तंग करते थे फिर भी वो लगे रहे। रघुनाथ दास गोस्वामी जो घर वाले पीछे पड़े रहते थे फिर भी वो भक्ति में लगे रहते। नाग पत्नियों के कालिया नाग थे, लेकिन वो अपनी नहीं रहे। देखिए हाँ, कितने हमारे पास उदाहरण है। तो इन उदाहरणों को देखकर ये कोई कहानियां थोड़ी है, या तो कह दो ये कहानियां, ये कहानियां नहीं है, ये सच्चाई है। ये उदाहरण हमारे पास है, थोड़ा हम इनका पालन करें। श्री प्रभुपाद जी घर में समस्या नहीं, फिर भी उपलब्धि करते रहे। तो चाहे हम पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी परिस्थिति में हो, भक्ति तो नहीं छोड़ सकते। गुरु के आगे तो हम छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हम अवसर में आत्मा है। शरीर तो आता जाता है, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। तो अगर हम इस संघ में हमेशा लगे रहेंगे तो हमारा अधिकार होगा कि हम निश्चित रूप से भगवान राम पाते जाएंगे। तो इसलिए जब भी हमारे पर कोई भौतिक सुख या भौतिक दुख आए तो हमें भक्तों की शरण में जाना चाहिए। सुख में ही भौतिक सुख आता है तो हम भक्तों को नजर ही नहीं आते, और दुख होता है तो फिर आ जाते हैं। चाहे भौतिक सुख आए या भौतिक दुख आए, हमें हमेशा भक्तों की शरण में जाकर समाधान मांगना चाहिए। क्या करें, सुख से भी निश्चित होना चाहिए, प्रभु क्या करूं, मेरे को इतना धन आ रहा है, पता नहीं कहां से इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतनी इनकम बढ़ गई, क्या करूं इसका बताइए। यानी कि चुप रहो बस, पहले इतना दान देते ना, बताना नहीं है। प्रभु से सेटिंग हुआ था 500 रुपये महीना, अब इनकम बढ़ी बताना नहीं, बस इतना ही रहने दो। चुपचाप अंदर ही अंदर कुछ योजना बनाते हैं। उस सुख को भी सहना नहीं है, उसको भी गुरु से डिस्कस करना है, और दुख को भी करना है। तो हमें हमेशा मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हम भक्ति में लगे रहें। उदाहरण हमें अच्छे देखने चाहिए, हमारे रोल मॉडल्स होने चाहिए। कुछ कोटि के बाद हमारे रोल मॉडल्स ऐसे होते हैं कि देखो उसके साथ ये किया तो उसने ये कर लिया, तो साधारण भौतिक उदाहरण देखेंगे तो फिर भौतिकता में जाए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्लोक से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर परिस्थिति में हम गुरु की आज्ञा का पालन करें। एक ही तरीका है जिससे हम इस भौतिक चेतना से मुक्त हो सकते हैं, भौतिक बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। कोई प्रश्न या टिप्पणी है किसी? अच्छा प्रश्न है कि सुख और दुख को हम सहने का प्रयास कर रहे हैं और गुरु के आज्ञा पालन का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो इंद्रतृप्ति की इच्छाएं हैं वो इसमें बाधा डाल रही हैं। तो कैसे इंद्रतृप्ति की इच्छाओं से हम मुक्त हो? असल में देखा जाए तो गुरु की आज्ञा अपने आप में पूरा पैकेज है। गुरु की आज्ञा से हमारे हर समस्या का समाधान है। गुरु की आज्ञा का हम हर शक्ति से पालन करते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारे इन स्थिति की इच्छा से भी मुक्त हो जाए। क्योंकि तो साधु संग, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ है। अनर्थ निवृत्ति तभी होगी जब हम गुरु के आदेशों का अर्थ भजन क्रिया का पालन करें। तो ये अनर्थ है कि हमारे इन स्थिति के प्रति रुचि का धीरे धीरे हम इससे मुक्त हो जाए। गुरु जानते हैं कि हम बहुत ही निकृष्ट हैं, बहुत ही पतित हैं, बहुत ही अधम हैं। गुरु सब जानते हैं, बोलते हैं इसको कैसे किया जाए, इसका उद्धार करना है। तो शुरू शुरू में वही आदेश देंगे जो हमें अच्छे लगेंगे। शुरू शुरू में जब बच्चे को स्कूल में भेजा जाता है, टाइनी टॉट स्कूल में, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, स्कूल में खेलता कूदता रहता है, तो उसको वही काम दे जाता है अच्छा लगता है। उसको जबरदस्ती नहीं की जाती, उसके साथ कुछ तो करो आप, खेलते कूदते एबीसीडी सीख लेता है, फिर उसको बड़े बड़े सेंटेंस दिए जाते हैं, बोला ऐसे लिखो। ये करो मान चलता रहे क्या हुआ मेरे साथ में ना सीखता हूँ किसी की तरह ऐसे भी ना दिख पाता इसी ढंग से गुरु शिष्य में सिखाते हैं चलो खेलते कूदते जो अच्छा करो हमारी साइको फिजिकल नेचर देखते कर सकते करो धीरे 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 जैसे हम प्रगति करेंगे गुरु के आगे और सख्त होती जाएंगे और फिर हम पालन करेंगे कि आपने बोला कि सुख के समय लोग भाग जाते हैं दुख के समय लोग आते हैं तो अक्सर तो लोग सब दुखी हैं लेकिन फिर भी बहुत कम परसेंटेज भगवान की शरण में आते हैं क्योंकि भगवान गीता में बता रहे हैं कि जो दुखियों को भी मेरे शरण में आते हैं वो पुण्य आत्मा है तो पुण्य आत्मा हर कोई नहीं आएगा हर कोई पुण्य आत्मा नहीं तो पिछले जन्मों की सुकृतियां इकट्ठी हुई होती हैं तभी कोई दुख के समय भी भगवान की शरण में आते हैं तो लोग ड्रग्स मदिरा पान और किसी जगह में चले जाते वो आने वाले भी जीव भी साधारण जीव नहीं गुरु के आगे दृढ़ता से पालन नहीं हो पाता तो हमें उन भक्तों का संग करना चाहिए जो दृढ़ता से पालन कर रहा है उन भक्तों के संग में हमारी दृढ़ता बढ़ेगी कोई बात नहीं विष्णु में तो हमारे सारे आध्यात्मिक कार्य फॉर्मेलिटी वाले होते हैं नियम भी याद रखो कि हमें हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव भी होना है आप ये नहीं ना कि ठीक है जी मैं तो कर रहा हूँ साथ में हमें इंट्रोस्पेक्टिव भी होना है और फिर जाके दोबारा भी आना गुरु के पास सीनियर भक्तों के पास कि भाव जी आगे का पालन तो हो रहा है लेकिन साथ में मेरे ये अनर्थ भी बढ़ रहे हैं बार बार अपना ऑपरेशन भी कराते रहना अभी मेंटेनेंस भी कराना अपना सकते हैं हम गुरु से ही पूछ सकते हैं अगर हम इसको अपनी बुद्धि से नहीं देख पा रहे हैं तो गुरु से ही पूछ सकते हैं कि आप बताइए किन भक्तों का ये संग करना चाहिए जिससे मैं आपकी आज्ञा का चरित्र पालन कर सकूं निश्चित रूप से मैं गुरु उपाय करें शरीर को विश्राम मिले और फिर मैं फिर भक्ति कर सकूं और सोते समय भी हम गुरु के आगे का स्मरण कर सकते हैं सोते समय भी हम केवल यही रखें जब मैं विश्राम कर लिया मुझे स्वस्थ होकर सुबह सोने से पहले गुरु को प्रणाम करें उठने के बाद गुरु को प्रणाम करें कि अभी शरीर तैयार है आपकी सेवा के लिए कुछ लोग सोते हैं कि मैं फ्रेश होकर फिर दोबारा से इंद्र तृप्ति करूं फ्रेश होकर फिर दोबारा से मैं बिजनेस करूं हम फ्रेश इसलिए हो रहे हैं कि हम जाके दोबारा से बिजनेस बिल्कुल बहुत अच्छी बात थैंक यू ये अच्छी बात कि प्रभुपा जी माता जी ने बरियात लगाया कि प्रभुपा जी कहते हैं कि अगर हमेशा भक्ति में लगे रहेंगे तो हमारा सोना सोना नहीं समाधि चौबीस घंटे वो समाधि में है, गुरु के आगे के संपर्क में, गुरु के संपर्क में समाधि ऐसे ही स्वप्न देखते हैं, ऐसे ही सब कुछ इसलिए क्या करना है, हमेशा निरीक्षण में रहना है, वरिष्ठ भक्तों को निरीक्षण में रहना चाहिए और अपने आप को मिलने का मूर्ख समझना है। हमारे पास बुद्धि है ही नहीं कि हम अपना निरीक्षण कर सके, अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख, मैंने केवल मूर्ख सबसे बड़ा मूर्ख समझना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कंकाल श्रीमद भागवतम की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी की अनंत कोटि वैष्णववृंद की निताई बहुत प्रेमानंद है। प्रभुपाद महाराज की।